नमस्कार। एक बात स्पष्ट होती जा रही है कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है या खत्म होने की कगार पर है, खत्म होने वाला है। इसका एक सबूत है 5 राज्यों में हुए चुनाव, जहां बीजेपी ने एक भी राज्य में जीत हासिल नहीं की, बल्कि जो 3 राज्य उसके पास थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वो भी उसके हाथ से चले गए। और जो आप जानते ही हैं कि प्रधान सेवक हमारे मुख्य प्रचारक रहते हैं, हर जगह चुनाव में चुनाव की रैलियां करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ ही यही है। तो उसको लेकर एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं आरएसएस के, किशोर तिवारी उनका नाम है। उनको महाराष्ट्र में मंत्री का दर्जा हासिल है, वो किसान नेता हैं दरअसल। उन्होंने आरएसएस में मोहन भागवत और भैया जी सुरेश जोशी को चिट्ठी लिखी है कि अगर अगले चुनाव जीतने हैं 2019 के, तो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में नहीं, उनकी अगुवाई में नहीं, उनका चेहरा दिखाकर नहीं, बल्कि नितिन गडकरी का चेहरा दिखाकर, उनको सामने रखकर चुनाव लड़िए, तब आप जीतने की हालत में पहुंच सकते हैं। किशोर तिवारी हैं, इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें इनका मानना है कि ये जो चुनाव हारे हैं 5 राज्यों में, और 3 में तो खैर जहां सरकार थी वहां हारे हैं, इसका एक ही कारण है, वो है अहंकारी नेता। वो नेता जिनमें इतना अहंकार भर गया है कि किसी दूसरी दुनिया में रह रहे हैं, किसी दूसरे गोले पर रह रहे हैं, भारत में ज़मीन पर उनके पांव हैं ही नहीं, ये इनका कहना है किशोर तिवारी का। इनका ये भी कहना है कि अहंकारी नेताओं के साथ साथ जो और फैक्टर जिम्मेदार रहे हैं हार के, इन्हीं अहंकारी नेताओं ने नोटबंदी, GST और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, एक वजह यह भी रही है चुनाव हारने की। तो अगला चुनाव जो है वो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के चेहरा दिखाकर नहीं, उनको उनकी अगुवाई में नहीं, बल्कि नितिन गडकरी की अगुवाई में लड़ा जाए। नितिन गडकरी भी हमने सुना आजकल अपना जाल फैला रहे हैं, उनको कोई गुरेज नहीं है, और वो कुछ लोगों को बता भी रहे हैं कि हाँ शामिल हैं वो भी इस दौड़ में कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल जाए। मेरे सहयोगी अखिलेश भार्गव से उन्होंने लंबी बात की, 3 घंटा लंबी, कुछ ऑन रिकॉर्ड कुछ ऑफ रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड में उन्होंने साफ कहा कि किसी पार्टी को या किसी सरकार को जब दोबारा से वो चुनाव में जाती है, वोट देने का आधार क्या होना चाहिए, जनता कौन सा आधार इस्तेमाल करे, विकास का, काम का, या जात पात और धर्म का। जरा सुनिए।
हिंदुस्तान की जनता को अपने ओपिनियन को परफॉर्मेंस के आधार पर, इकोनॉमिक पॉलिसी के निर्णय के आधार पर, अपना एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, डेवलपमेंट के इशू के आधार पर, सरकार का परफॉर्मेंस क्या इसके आधार पर वोट देना चाहिए, न कि जात पंथ धर्म और भाषा के ऊपर देना।
दूसरा जिक्र उन्होंने किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिससे संकेत मिलता है कि वो ये मानते हैं कि सरकार की दखलंदाजी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम में, वो ठीक नहीं है। वो मानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो गलतियां रिजर्व बैंक की है उसके लिए उसको दोष दिया जाना चाहिए, और जो गलतियां या जहां आलोचना सरकार की होनी चाहिए वहां सरकार की होनी चाहिए। तो रिजर्व बैंक की स्वायत्तता में जो दखलंदाजी हो रही है सेक्शन 7 लगाने की बात करके, उस पर भी उन्होंने एक तरह से संकेत दिया कि वो उसके खिलाफ है। सुनिए।
रिजर्व बैंक का भी चर्चा मुझे समझ में नहीं आती। रिजर्व बैंक स्वायत्त है तो देश के इकोनॉमी के अप डाउन के अलावा उनको जिम्मेदार पकड़ो। आप फाइनेंस मिनिस्टर को पकड़ते, प्रधानमंत्री को पकड़ते, जिम्मेदार पकड़ते, भारत सरकार को पकड़ते हो और हमको बोलते हो वो स्वायत्त है। देखो, हम डे टू डे उनके काम में हस्तक्षेप करने के मैं भी विरोध में हूँ, पर अल्टीमेटली देश के विकास की इकोनॉमिक पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट तय करेगा, वो तो सबके ऊपर बंधनकारक रहेगी।
तीसरी एक बहुत ज़रूरी बात उन्होंने कही कि जब उनको मंत्री बनाया गया ऐसे एक विभाग का, ऐसे मंत्रालय का जो पहले उमा भारती के पास भी था, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो बंद पड़े हुए थे, 400 से ज़्यादा, और बहुत सारे ऐसे लोन थे जो NPA बनने वाले थे, और वो मानते हैं कि इसमें सरकार का दोष भी था। ज़रा सुनिए।
मैंने जब मंत्री पद का चार्ज संभाला तो हमारे विभाग में 403 स्टोल प्रोजेक्ट थे।
यस सर।
जो बंद पड़े थे, जिसमें काम बंद था, कुछ बैंक के अकाउंट NPA बन गए थे, कुछ बनने की कगार पर खड़े थे, और इसलिए परिस्थिति गंभीर थी। पर उस समय हमने ये तय किया कि हम इसको फिर से शुरू करेंगे। एक बात सच है जो मैं स्वीकार करता हूँ कि 75% इस प्रोजेक्ट बंद होने का कारण सरकार थी।
कहने का मतलब ये है कि ये बात स्पष्ट हो रही है कि विरोध के सुर अब बीजेपी के अंदर से भी उठने शुरू हो चुके हैं। अभी तक तो यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा और अरुण शौरी बोल रहे थे, अब आरएसएस से जुड़े नेता भी बोल रहे हैं कि अगर अगले चुनाव जीतने हैं तो वो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की शक्ल दिखाकर उनकी रैलियों के आधार पर नहीं जीते जा सकते, आपको नितिन गडकरी को आगे लाना होगा। ये संकेत नितिन गडकरी ने खुद हमारे ही सहयोगी अखिलेश भार्गव को दिए हैं। जरा सोचिए इसका मतलब क्या हो सकता है। अभी 6 महीने बाकी हैं। सन 80 के दशक में और 90 की शुरुआत में एक शब्द बहुत मशहूर होता था चुनाव को लेकर, टीना फैक्टर, TINA, देर इज नो ऑल्टरनेटिव, यानी कोई विकल्प नहीं है। आजकल बहस उसी को लेकर चल रही है कि अगर मोदी नहीं तो कौन। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे 60 के दशक में होता था आफ्टर नेहरू हु, नेहरू के बाद कौन होगा, लेकिन हुआ ना, शास्त्री जी आए ना, शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी भी आईं, उनके बाद और भी एक एक करके आते गए लोग। विकल्प, ऑल्टरनेटिव डेमोक्रेसी में ही होते हैं। ये कहना कि देर इज नो ऑल्टरनेटिव, दिस इज एन एंटी थीसिस ऑफ डेमोक्रेसी। ये जमहूरियत की जो पूरी सोच है, समझ है, उसके खिलाफ जाता है। विकल्प यानी ऑल्टरनेटिव डेमोक्रेसी में ही होते हैं, डिक्टेटरशिप में नहीं होते। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। पंडित नेहरू का जिक्र तो मैंने किया ही। अब श्रीमती इंदिरा गांधी को जब सन 77 में चुनाव हुए इमरजेंसी के बाद, क्या उनको या किसी को भी अंदाजा था चुनाव से पहले कि एक विकल्प ये भी हो सकता है, एक ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि सारी पार्टियां मिल जाएं आपस में, विपक्ष की, और एक नई पार्टी पैदा हो जाए, जनता पार्टी। अब वो जैसी भी रही लेकिन एक विकल्प तो निकला। उसके बाद क्या किसी ने सोचा था कि ऐसी सरकार भी बन सकती है जिसमें लेफ्ट का भी पूरा समर्थन हो बाहर से और राइट का, बीजेपी का भी पूरा समर्थन हो बाहर से, और ये दो विभिन्न विचारधाराओं वाली पार्टियां जो हैं, एकदम लेफ्टिस्ट और एकदम राइटिस्ट, ये दोनों एक ऐसी सरकार को सपोर्ट करेंगी जो सेंट्रिस्ट है, वीपी सिंह की सरकार, तो ये भी एक विकल्प निकला ना। उसके बाद देवेगौड़ा साहब ने सरकार बनाई, 12 या 13 पार्टी की सरकार थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि 13 पार्टियों की सरकार हो सकती है। इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने तो हैरानी जाहिर की थी कि लोग मुझसे पूछते हैं ये कैसी सरकार है, 12-12 पार्टियों की सरकार, 13-13 पार्टियों की सरकार। उनको खुद नहीं मालूम था उस वक्त कि वो एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें 23 पार्टियां होंगी, 23 या 24 पार्टियां, वो भी विकल्प निकला। तो विकल्प तो हमेशा डेमोक्रेसी में ही निकलते हैं। ये कहना कि आने वाले 2019 के चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी है, गलत होगा बिल्कुल। हमें नहीं लगता कि ये मोदी बनाम राहुल गांधी है। पहले तो इसी बात पर ही सवाल उठने शुरू हो रहे हैं कि क्या आने वाले चुनाव की अगुवाई नरेंद्र मोदी करेंगे। अगर करते भी हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि राहुल गांधी विकल्प हो। जो रीजनल पार्टियां होंगी, जो भी महागठबंधन की पार्टियां होंगी, वो तय करेंगी कि कौन होगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा। तो ऐसे में ये कहना कि अगर मोदी नहीं तो कौन, अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसके कोई मायने ही नहीं रह गए हैं। हमेशा विकल्प निकले हैं, ऑल्टरनेटिव निकले हैं, चाहे जैसे भी निकले हों, कुछ कामयाब रहे हैं, कुछ पूरी तरह से कामयाब नहीं रहे हैं, लेकिन विकल्प, ऑल्टरनेटिव हमेशा निकले हैं। इसलिए एक और नारा मशहूर हो रहा है आजकल टीना के साथ साथ, देर इज नो ऑल्टरनेटिव के साथ एक आ रहा है मीना, MINA, मोदी इज नॉट द ऑल्टरनेटिव। अब देखते हैं, वक्त दूर बहुत कम है, 6 महीने रहे हैं सिर्फ, चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, कि क्या होता है चुनावों में, विकल्प मिलता है या नहीं मिलता। नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।
हमारे यहाँ एक कवि हुए हैं इब्ने इंशा, उनका कहना है हक अच्छा पर हक के लिए कोई और लड़े तो और अच्छा,
सच अच्छा, पर सच के लिए कोई और मरे तो और अच्छा। लोग हमसे कहते हैं कि आप हमारे हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहिए। हम तो उठाते रहेंगे, आप क्या करेंगे? आप अपनी ज़िंदगी यूं ही जीते रहेंगे? अब आप प्रजा नहीं हैं, आप गुलाम नहीं हैं, आप नागरिक हैं। और क्योंकि आपके पास वोट है, आपको भी काबिल नागरिक बनना है। आप कोई हाकिम चुनने नहीं जा रहे, आप मालिक चुनने नहीं जा रहे, राजा चुनने नहीं जा रहे, आप अपना सर्विस प्रोवाइडर चुनने जा रहे हैं, सेवक चुनने जा रहे हैं। देखिए, मुझे अब HW News पर जरिया बदला है, लेकिन तेवर वही है।